ईश्वरदेवाय नमः, श्री मुनिसुव्रतनाथाय नमः, तुभ्यं नमः ऋषभदेव गुणाकराय, तुभ्यं नमः वृषभनाथ सुधाकराय, तुभ्यं नमोस्तु मुनिसुव्रत सुव्रताय, तुभ्यं नमोस्तु जिनसूर्य प्रभं कराय। जब लो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री गुणधर स्वामी के द्वारा, गुणभद्र सूरी के द्वारा रचित उत्तर पुराण ग्रंथ में जहां भगवान अजितनाथ से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत 23 तीर्थंकरों का, उनके मध्य में होने वाले चक्रवर्ती बलभद्र नारायण आदि शलाका पुरुषों का चारित्र वर्णित है, वहीं भगवान मुनिसुव्रतनाथ के चरित्र को कहते हुए 67वें पर्व के अंदर आचार्य श्री भगवान मुनिसुव्रत को नमन करते हुए चरित्र का शुभारंभ करते हैं। निवृत्तौ रक्त शब्दार्थौ यस्या भूत सर्ववस्तुषु देयान्नः सव्रतम् स्वस्य सुव्रतो मुनिसुव्रतः। अर्थात जिनके नाम के साथ व्रत शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात जिन्होंने महाव्रतों को, उत्तम व्रतों को धारण किया, ऐसे मुनिसुव्रतनाथ भगवान हम सबको भी व्रतों को धारण करने की भावना प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। इस भावना के साथ हम सब भगवान मुनिसुव्रत की कथानक की ओर चलते हैं, जिनके लिए पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने चतुर्विंशत तीर्थंकर भगवान की स्तुति के अंदर कहा है, महाव्रत धरो धीरा सुव्रतो मुनिसुव्रतः, नमस्तुभ्यं तन्तान्मे रत्नत्रयस्य पूर्णता। भगवान मुनिसुव्रतनाथ यानी उनके नाम की सार्थकता को श्लोक के अंदर समाविष्ट करके पूज्य माता जी कहते हैं, हे भगवान, आप महाव्रत को धारण करने वाले महापुरुष हुए हैं, धीर पुरुष हुए हैं। आपका सुव्रत धारण करने के कारण मुनि सुव्रत यह नाम प्रसिद्ध हुआ है और रत्नत्रय की पूर्णता की प्राप्ति के लिए मेरा आपके चरणों में नमस्कार है। एक हेतु लेकर के भगवान को नमन किया जाता है कि भगवान आपके समान रत्नत्रय, आपके समान मोक्ष का मार्ग, आपके समान बोधि का लाभ हमें भी प्राप्त हो। तो मुनिसुव्रतनाथ भगवान से कहा गया कि भगवान आप हमें भी व्रतों को धारण करने की शक्ति प्रदान करें। जैसे पूज्य माता कहती हैं, भगवान की भक्ति से शक्ति आती है, शक्ति से युक्ति मिलती है और जब युक्ति काम कर जाती है तो अपने को मुक्ति मिलती है, यानी मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए भगवान की भक्ति सर्वाधिक आवश्यक है। मुनि सुव्रत सुव्रत के दाता भव हरता मुक्ति विधाताओ, मैं नमो तुम्हें मेरे स्वामी मुझको भी सिद्धि प्रदाताओ। वैराज रही नगरी धन्य त्रैलोक्य गुरु जहाँ थे जन्मे, है धन्य सुमित्र पिता माता सोमा भी धन्य हुई जग में। महाराजा सुमित्र और माता सोमा राजक रही के महाराजा और महारानी थे और उनके आंगन में माता सोमा के गर्भ से जन्म लेने वाले मुनि सुव्रत नाथ त्रैलोक्य के गुरु हुए और मुझे भी सिद्धि को प्रदान करें, ऐसी भावना से आप श्रवण कर रहे हैं मुनि सुव्रत नाथ भगवान के तृतीय भव पूर्व से कथानक। काफी लोगों को स्मरण में आ ही गया होगा कि चंपापुर के महाराजा हरि वर्मा थे और उन्होंने अनंत वीर नाम के मुनिराज का थोड़ी सी देर के लिए सत्संग किया। उनके जीवन की दिशा, उनके जीवन की दशा परिवर्तित हो गई। अर्थात गुरुदेव ने जो उपदेश दिया, तत्व का उपदेश, बारह भावनाओं का चिंतवन करने की प्रेरणा, कर्म बंध का उपदेश जो दिया, राजा के दिल के अंदर घर कर गई। कहते हैं होनहार विद्वान की होत सीखने पर, अर्थात जो होनहार होते हैं तो उनको एक शब्द भी या कुछ क्षण की सत्संगति भी उनके लिए पर्याप्त हो जाती है। राजा को वैराग्य हो गया और उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया, उसको राज तिलक करके जा करके महाराज के समीप में सब कुछ परित्याग करके, राज वैभव का त्याग करके दीक्षा धारण कर ली। ऐसी दीक्षा कि जिसके बाद कभी संसार का स्मरण नहीं आया, कभी भौतिक सुखों की ओर उन्होंने देखा नहीं और इतना ध्यान और ज्ञान में लीन हो गए कि उन्हें 11 अंगों के सुख का ज्ञान हो गया। और उसके बाद आयु के अंत में समाधि मरण पूर्वक नस और शरीर का परित्याग किया तो 14वीं प्राण स्वर्ग के अंदर जाकर इंद्र के रूप में जन्म धारण किया। और उसके पश्चात अब जब उनके आयु के क्षण निकल जाते हैं तब वे मध्य लोक में जन्म लेने के लिए आतुर होते हैं, अर्थात उनकी आयु के 6 माह बाकी रह गए और पृथ्वी तल पर आने वाला वह जीव उनके जन्म गृह के आंगन की देवों ने रत्न वृष्टि करके वहां पर खूब आनंद उत्सव मनाया और पूरे मध्य लोक को बता दिया कि इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अब 20वें तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। माता सोमा के आंगन में धन कुबेर ने आकर के रत्नों की वृष्टि करना शुरू कर दिया। इसीलिए गर्भ कल्याणक में आप देखते हैं कि धन कुबेर को जब सौधर्म आज्ञा देते हैं, ये धनपते आप जाइए मध्यलोक के अंदर और राजगृही नगरी को ऐसा सजा दीजिए स्वर्ग के समान सुंदर हो जाए। और जब जाकर के सौधर्मिंद देखते हैं कि कुबेर ने कैसी नगरी सजाई है तो वास्तव में वे गदगद हो जाते हैं, कहते हैं तो हमारी स्वर्ग भूमि से भी ज्यादा सुंदर नगरी आपने सजाई है। और वहां महल में जब तीर्थंकर पुत्र को जन्म देने वाले महाराजा और महारानी निवास करते होते हैं, वहां पर आखिर एक दिन वह क्षण आता है जब माता 16 सपने देखती है। ऐसा दिन आया था जब श्रावण कृष्णा द्वितीया के दिन श्रवण नक्षत्र में प्राणतेंद्र का जीव सोमा रानी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ और उन्होंने सपने देखकर अपने महाराजा सुमित्र से राजसभा के अंदर ही 16 स्वप्नों का फल पूछा, जान लिया कि आपके घर में तीर्थंकर का अवतार हुआ है। आगे जाकर के वे तीर्थंकर पुत्र को उत्पन्न करती हैं, अर्थात जन्म देती हैं। और वह क्षण इतना रोमांचकारी होता है कि मैं समझती हूँ आज भी न जाने कितने जीवों को जन्म कल्याणक के दिन सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, न जाने कितने जीव कितने कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं, पाप कर्म उनके नष्ट हो जाते हैं और उनका जन्म भी धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए चाहे कितने पंच कल्याणक देख लें लेकिन हर पंच कल्याणक में कुछ नया पन दिखाई देता है और हर पंच कल्याण के अंदर नया पुण्य अर्जित हो जाता है। माता तो धन्य होती ही है जो त्रैलोक्य पूज्य पुत्र को जन्म देती है, उसका तो मातृत्व धन्य हो ही जाता है। वे माता पिता तो मोक्षगामी बन ही जाते हैं, लेकिन उनके गर्भ से जिनका जन्म होता है, उस जन्म को देखने वाले नर नारी भी धन्य हो जाते हैं। तो महानुभाव, ऐसे उस पुत्र के बारे में श्री गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि मयूर कंठ के समान नील वर्ण वाले मुनि सूरतनाथ भगवान का जन्म होता है, अर्थात मुनि सूरतनाथ भगवान की शरीर का वर्ण नील वर्ण था। आप सोचे नीले नीले भगवान कैसे लगते होंगे, बहुत सुंदर, उनकी कांति क्या थी, सब कुछ फीका पड़ जाता था। तभी तो इंद्र ने देखने के लिए एक दो नहीं 1008 नेत्र बनाता था, वरना वो कहता कि ऋषभ देव भगवान तो बहुत अच्छे थे, आप कहां नीले वर्ण वाले काले वर्ण वाले। लेकिन नहीं, भगवान नील वर्ण के होते हुए बिल्कुल नीलम मणि के समान सौंदर्य आभा को बिखेर रहे थे। इंद्र ने 1000 नेत्र बनाए तो भी वो तृप्त नहीं हुआ। और आप भी देखते हैं कि जो सौंदर्य इंद्र बनते हैं, ऐसा पुण्य अर्जित करते हैं, ऐसा लगता है कि सचमुच में अगर आज उनकी विक्रिया हो तो मनुष्य जन्म में भी वह विक्रिया से 1000 नेत्र बना ही लेते। जब हमारे अध्यात्म जन उस दृश्य को उपस्थित करते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में इस युवक को जरूर इंद्र का पद प्राप्त होगा, इंद्र की आयु का बंद कर लिया होगा। तो ऐसे दृश्य को देख करके हम और आगे चलते हैं कि भगवान मुनि सूरतनाथ शैशव अवस्था व्यतीत करते हैं। इंद्र सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर ले जाकर के और उनका जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर करते हैं। कौन सा सुमेरु पर्वत, जो 1,00,000 योजन ऊंचा 40 करोड़ मील की ऊंचाई पर जहाँ पांडुक शिला बनी हुई है, वहाँ पांडुक शिला पर बैठा करके भगवान का जन्माभिषेक होता है और 1008 हाथ बना करके एक साथ सारे घड़ों को उठा करके और वो एक साथ भगवान पर अभिषेक करते हैं तो भी भगवान रंच मात्र चलायमान नहीं होते, इतनी उनकी शक्ति रहती है, अतुल्य बल उनके शरीर के अंदर होता है। उस दृश्य को देखने के लिए आज भी जन कल्याणक में सर्वाधिक जनता भाग लेती है और एक एक कलश अभिषेक करने के लिए अपना सौभाग्य समझते हैं। महानुभाव, ऐसे पुण्य चरित्र को सुनते रहिए और आने वाले केवल 16-17 दिनों के अंदर ही इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं, जब अयोध्या की धरती पर भगवान के पंच कल्याण का दृश्य उपस्थित होने वाला है। आप सब भी जो आ सके आएंगे, वरना पारस चैनल के माध्यम से और अयोध्या चैनल जो YouTube के ऊपर अयोध्या जैन तीर्थ चैनल रहेगा उसके ऊपर भी आपको पूरे दिन का कार्यक्रम दिखाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप अयोध्या के पंच कल्याणक को देख करके और अपने पुण्य की वृद्धि कर सकें। भगवान मुनि सूरतनाथ हम सबको सुव्रत प्रदान करें और पुण्य की वृद्धि कराएं, पुण्य का वर्धन कराएं, यही भगवान से प्रार्थना और आप सब लोगों के लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद है। जय मुनि सूरतनाथ भगवान की।